بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان کے نیوز کرنٹ افیئر چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں آپ کا میزبان شاہزیب دھریجا. میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی میزبان اور سینئر سپورٹس اینالسٹ عبدالغفار خان.
السلام علیکم سامعین, بہت شکریہ شاہزیب.
سامعین, پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے اور اہم خبروں کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہم ترجیحوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے. بلا تاخیر بڑھیں گے پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. بات کریں گے پہلی خبر کے حوالے سے. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کے ٹاپک شیئر کر لوں, اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ خبروں کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کیا چل رہا ہے کھیلوں کی دنیا میں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ اس وقت جاری ہے اور آج کیا کتنے میچز ہوئے ہیں اور ان کی کیا صورتحال رہی ہے, اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. لاہور بلوز اور راول پنڈی نے اپنے میچز کی بات اگر کی جائے تو فیصل آباد نے اپنا میچ جیتا اور لاہور بلوز نے اپنا میچ جیتا ہے. راول پنڈی اور پشاور کا تو اس حوالے سے بات کریں گے, ڈیٹیل لیں گے عبدالغفار خان سے. اور دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے گورنمنٹ پاکستان کو اس بات کی ریکویسٹ فارورڈ کی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں جو سپورٹس میں کرپشن کے اگینسٹ ہوں, مخالف ہوں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ملکی سطح پر مرد اور خواتین کے لیے کراٹے چیمپئن شپ کا آغاز لاہور میں کل سے ہونے جا رہا ہے, 25واں ایڈیشن ہوگا یہ. اور اس حوالے سے مزید بھی خبروں کو سپورٹس کے ریگارڈنگ خبروں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ اس وقت نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ جاری ہے, اس حوالے سے بات کرنی ہے آپ سے. اور میں چاہوں گا غفار اس حوالے سے سامعین کو اپڈیٹ کیجیے گا. اور آج میچ تھا لاہور بلوز اور راول پنڈی کے درمیان اور فیصل آباد اور پشاور کے درمیان, کیا صورتحال رہی؟
جی بالکل شاہزیب, آج کے میچز کے حوالے سے آپ نے جس طریقے سے کہا تو لاہور بلوز نے راول پنڈی کو ہرایا ہے اور راول پنڈی کی ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, حالانکہ 17 گیندیں بھی باقی تھی. اور جب ٹاس جیتا لاہور بلوز کے کپتان نے تو انہوں نے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے راول پنڈی کی ٹیم نے 118 رنز بنائے اور ان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. افتخار احمد نے سب سے زیادہ 60 رنز بنائے اور لاہور بلوز کی جانب سے آصف جبار اور آغا سلمان نے 3-3 وکٹیں حاصل کی, جبکہ علی شفیق اور خالد عثمان نے 2-2 وکٹیں حاصل کی. راول پنڈی کے 118 رنز کے جواب میں لاہور بلوز کی ٹیم نے 17.1 اوورز میں یہ ہدف جو تھا وہ حاصل کر لیا صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر, اور اسی طرح 7 وکٹوں سے اس میچ میں کامیابی حاصل کی. امام الحق جو کہ ٹاپ سکورر رہے 36 رنز کے ساتھ, محمد اصغر راول پنڈی کی جانب سے انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, آغا سلمان لاہور بلوز کی جانب سے وہ مین آف دا میچ قرار پائے, جن کا تعلق لاہور بلوز سے ہیں. آغا سلمان آج مرد میدان قرار پائے. فیصل آباد اور پشاور کی میچ کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد نے پشاور کو ہرا دیا اس میچ میں, اور اس میچ میں پشاور کی ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پشاور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 139 رنز بنائے اور ان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی 19.5 اوورز میں. آج پشاور کی جانب سے رفعت اللہ مومند نے صرف 12 گیندیں کھیل کر 32 رنز اسکور کیے, 3 چوکے اور 3 شاندار چھکے لگانے میں وہ کامیاب رہے. بڑا شاندار آغاز فراہم کیا تھا رفعت نے, لیکن وہ جلدی میں آؤٹ ہو گئے, اور اگر رفعت مزید سٹے کرنے میں کامیاب ہوتے تو پھر یقیناً پشاور کی ٹیم کافی رنز بنانے میں کامیاب ہوتی. 139 رنز کے جواب میں فیصل آباد کی ٹیم نے جو ٹارگٹ حاصل کیا اس میں صاحب زادہ فرحان نے جو کہ مین آف دا میچ رہے فیصل آباد کی جانب سے, اور اس مقابلے میں فیصل آباد کی ٹیم نے जो कि कामयाबी हासिल की है। तो अब फैसलाबाद की जो पॉइंट्स है उसमें भी इजाफा हुआ है और लाहौर ब्लूज की टीम ने भी बड़ी कीमती पॉइंट हासिल की है। शाजिब,
बिल्कुल आप अपडेट कर रहे थे आज जो हमारा नेशनल T20 कब जारी है उस हवाले से, और मैं चाहूंगा हम डिस्कस करें आज के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज है। सबकी नजरें इस वक्त एशिज सीरीज का आज आगाज हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाने वाली ये टेस्ट सीरीज होती है, और इसमें ये जहां तक बात की जाए अगर टीम्स की तो एशिज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ये मैचेस खेले जाते हैं। 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज होती है और इसकी बकायदा तौर पे एक हिस्ट्री है। उस हवाले से मेरे ख्याल में ज्यादातर सामीन जानते भी होंगे कि बड़ा मिथ है एक। एनीवेज आज पहला टेस्ट मैच था, ब्रिस्बेन में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उसका पहला दिन था। क्या सूरत हाल रही उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टेस्ट डेब्यू किया बैंक्रॉफ्ट ने, और इंग्लैंड की जानिब से उनकी पुरानी टीम को रखा गया है, कंटिन्यू किया गया है। ब्रिस्टो नहीं खेल पा रहे हैं, जॉनी ब्रिस्टो वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। टीम की अगर बात की जाए अच्छा आगाज नहीं हो सका अगर बात की जाए इंग्लैंड के स्टार्ट की। 2 रन अभी फकत बने थे और लेस्टर कुक जो इस वक्त कप्तान नहीं है शायद, मगर उनको 2 रन पे वो पहली विकेट खोई लेस्टर कुक की सूरत में इंग्लैंड ने, और उसके बाद स्टोनमैन दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी थे। 127 रन पे दूसरी विकेट गिरी, 125 रन की शराकत कायम हुई स्टोनमैन और विंस के दरमियान, जेम्स विंस और स्टोनमैन के दरमियान 125 रन की सदाकत जो है शराकत कायम हुई। अलिस्टर कुक को कैच किया हैंडस्कॉम्ब ने और उनके विकेट हासिल की। मिचेल स्टार्क ने 2 रन बनाने में कामयाब हो सके, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उसके अलावा उनके साथ ओपनिंग की थी स्टोनमैन ने और वो 53 रन बनाकर आउट हुए, शिकार हुए, बोल हुए कमिंस की गेंद पे, और उसके अलावा जेम विंस रन आउट हुए 83 रन बनाकर। 170 गेंदों का सामना उन्होंने भी किया 12 चौकों की मदद से, और उसके बाद जो रूट आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी थे जो कि LBW हुए कमिंस की गेंद पे, 15 रन बना सके, 50 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 1 चौका उनकी इनिंग्स का हिस्सा था। उसके बाद डेविड मिलान क्रीज पे मौजूद थे और मुइन अली क्रीज पे मौजूद थे। अभी तक का खेल जो पहले रूस का हुआ है, डेविड मिलान नॉट आउट हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, 64 गेंदों का सामना करके 28 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, 6 चौके उनकी इनिंग्स का हिस्सा हैं। मोइन अली की अगर बात की जाए 31 बॉलों पे 13 रन बनाने में कामयाब हुए, 1 छक्का उनकी इनिंग्स का हिस्सा है। अभी बात की जाए तो टीम अभी आगे बैटिंग के लिए आएंगे वॉक्स, जेम स्ट्रेट ब्रॉड पॉल एंडरसन और ब्रिस्टो। यहां पे जहां तक अगर पहले दिन की अगर बात करते हैं हम तो स्लो जिसे कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है आज दिन का, 194 रन पूरा दिन खेल के क्रीज पर, तो ये एक किस्म का डिफेंसिव किस्म का स्टार्ट कह सकते हैं शायद से, क्योंकि मोइन अली अभी क्रीज पे मौजूद है। खैर पूरे तमाम बैटिंग जारी है इस वक्त इंग्लैंड की जानिब से। थोड़ा सा मैं बॉलिंग पे नजर डालूं, उसके बाद हम थोड़ा सा तजिया भी करेंगे और मैं आपसे राय लूंगा आपकी कि आप किस तरह देखते हैं इस तरह मैच को। और बॉलिंग जनाब मिसेस स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और लियोन ने आज 4 बॉलर्स को आजमाया है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने 19.3 ओवर किए हैं। मिचेल स्टार्क ने जिनमें से उन्होंने 45 रन देके 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं 2.30 के इकॉनमी रेट से। हेजलवुड की अगर बात की जाए 18 ओवर किए हैं और 51 रन देके कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। सबसे कामयाब आज के बॉलर कमिंस रहे जिन्होंने 19 ओवर्स में 59 रन देके 2 विकेटें हासिल करने में वो कामयाब हुए। लियोन स्पिनर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, आज सबसे ज्यादा ओवर्स उन्होंने किए 24 ओवर्स किए और 40 रन देके कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। आज के दिन को आप अब्दुल गफार खान कैसे देखते हैं, और ये सीरीज बिलाशुबा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं दोनों साइड्स के प्लेयर। जिस तरह अक्सर बात की जाती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न होने वाले मैचेस बड़े ये रवायती हरीफ हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और एशिज के बारे में तो बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा उनकी तवज्जो इस सीरीज पर होती है। आज जब बाहर के मनाजिर भी दिखाए जा रहे थे ग्राउंड के, तो बहुत ज्यादा शायकीन पुरजोश थे और ऑस्ट्रेलियाई शायकीन ने बूट्स पकड़े हुए थे बीट इंग्लैंड के, और बड़ा पुरजोश थे उनके शायकीन भी। तो ये सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अगर एशियस की बात की जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होती है। और आज का पहला दिन आप कैसे देखते हैं?
जी बिल्कुल शाहजेब, पहले दिन के हवाले से अपने सामीन को बताता चले कि आज के इस टेस्ट मैच के पहले दिन जब टॉस हुआ तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान ने जीता और पहले खुद खेलने का फैसला किया, क्योंकि विकेट बजाहिर बैटिंग के लिए काफी साजगार दिखाई दे रही थी। और जिस तरह आपने बात की कि काफी स्लो स्टार्ट लिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, तो यकीनन स्लो स्टार्ट आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आज के मैच में बैटिंग की है। लेकिन जिस तरीके से रूट विकेट पर मौजूद है, अगर रूट की विकेट ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हासिल नहीं कर पाते तो फिर
यहां पे मैं थोड़ा सा बता चलूं कि जो रूट्स 15 रन बनाकर आउट हो गया, अभी इस वक्त डेविड मिलान और मोइन अली क्रीज पर।
अच्छा, रूट आउट हो चुके हैं, सॉरी। और
लकीली मैं समझता हूं कि कमिंस ने दूसरे एलबीडब्ल्यू जो उनको किया बड़ा खूबसूरत तरीके से, और जो रूट की विकेट जिस तरह आप बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में काम है।
जी बिल्कुल, और रूट की विकेट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स ने हासिल की है तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो पोजीशन है वो काफी मुस्तहकम हो चुकी है। और
अच्छा, आज ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड के बारे में जरा बताइएगा सामीन को कि आज क्या स्क्वाड है उनका इस मैच के लिए।
जी बिल्कुल, वार्नर हैं, बेन क्रॉफ्ट हैं, ख्वाजा हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, स्मिथ हैं टीम के कप्तान हैं, और हैंड्स कॉम्प है, इसके साथ साथ मास टीम में मौजूद है, पेन है, स्ट्रॉक है, कॉमिन्स हैं, हॉजलीवुड हैं और लॉयन है जो कि स्पिन बॉलर हैं। और शाहदेव, आपने स्क्वाड के हवाले से बताया तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आज सबसे जो कामयाब बॉलर रहे वो स्ट्रॉक थे, जिन्होंने स्ट्रॉक और कॉमिन्स ये दोनों बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेटें हासिल की हैं। स्ट्रॉक ने एक विकेट हासिल की जबकि कॉमिन्स ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। और अब तक जो सूरत हाल है शाहजेब, आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन बराबरी की सतह पर हैं और दोनों टीमें इस वक्त मैच में मौजूद है। और कल का जो दिन है वो काफी अहमियत का हामिल है, और कल के दिन के पहले घंटे का जो खेल है वो काफी अहमियत का हामिल है। अगर इस घंटे में ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स मजीद दो या तीन विकेटें हासिल करने में कामयाब होती हैं तो फिर इंग्लैंड की टीम को इस मैच में दोबारा आने के लिए काफी हिम्मत दिखानी होगी। और अगर इंग्लैंड की जानिब से एक आध पार्टनरशिप लग जाता है 100 रन से ज्यादा तो फिर यकीनन ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स पर भी दबाव हो सकता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हमेशा विकेटें फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार होती है तो बजाय ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक मरतबा फिर से ऑस्ट्रेलिया में जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको काफी मदद मिल रही है। और जैसा कि आपने कहा भी है कि लैन ने 24 ओवर्स की है लेकिन लैन को कोई भी कामयाबी ताहाल नहीं मिल सकी है, तो यकीनन जो कल का दिन है वो काफी अहमियत का हामिल है। शाजिद,
बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के बारे में भी बात करना चाहूंगा, मगर सामीन यहां पर मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, बढ़ेंगे वक्फे की जाने वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
ویلکم بیک سامعین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کنٹ فیئر چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ سے شاہزیب میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. ہم بات کر رہے تھے ایشیز کے حوالے سے، میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی میزبان اور سینئر سپورٹس اینالسٹ عبدالغفار خان. ایشیز کے حوالے سے سامعین بات ہو رہی تھی اور آسٹریلین اسکواڈ کے حوالے سے کتنا بیلنس ہے اور کیا کوالٹیز ہیں اسکواڈ میں، تو بات کی جائے. بینکرافٹ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں، کانفیڈنٹ بالر ہیں، ڈومیسٹک میں بہت اچھا بیٹسمین ہیں، بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے آئے ہیں اور ان کو فائنلی چانس ملا ہے. امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ اچھا پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈیوڈ وارنر کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. ڈیوڈ وارنر ٹیم کا حصہ ہوں گے، سینئر ہو چکے ہیں، اچھی کارکردگی کا کنٹینیوسلی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ون ڈے میں تیسرے نمبر پر یہ موجود ہیں رینکنگ میں، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہترین بیٹسمین ہیں. اس کے بعد بینکرافٹ کس طرح پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک میں، تو اچھی پرفارمنس دے کے ٹیم کا حصہ بنے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹیم کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوتے ہیں. عثمان خواجہ کی اگر بات کی جائے، پاکستانی نژاد آسٹریلیائی بیٹسمین ہیں، کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، ٹیم میں پرفارم کرتے ہیں، تو اچھی کارکردگی کی امید ہے آسٹریلیائی ٹیم کو ان کی جانب سے. پچ کی جس طرح آپ نے بات کی، جس طرح فاسٹ ٹریکس ہوتے ہیں، تو کل کا مارننگ سیشن بلا شبہ بہت زیادہ امپورٹینس کا حامل ہوگا. اور کل اگر ڈیوڈ ملان اور معین علی آگے لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، اور کم از کم 60-70 رنز کی پارٹنرشپ مزید لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کی ایز اے ہول پارٹنرشپ 100 سے کراس کر جائے گی، تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی دھوپ پڑے گی تو پچ جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے بہتر ہو جائے گی، سازگار ہو جائے گی. جب تک ویٹ رہے گی پچ، تھوڑی سی اس میں نمی رہے گی، تو بالر کو آسانی ہوگی، سیم ہوگا بال اور سوئنگ بھی ہوگا بال میں. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر صبح پہلی 10-15 اوورز میں وکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آسٹریلوی بالر، تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں انگلینڈ کے لیے. مگر ابھی تک کی اگر بات کی جائے تو ایک اچھا سٹارٹ کہہ سکتے ہیں، مگر سلو سٹارٹ ضرور تھا. آج کم از کم 230 رنز، یہ کم از کم 40-50 رنز
اگر دیکھا جائے، میرے خیال میں 90 اوورز کرانے تھے آسٹریلین بالرز کو
خراب روشنی کی وجہ سے،
80 اوورز انہوں نے کیے ہیں، تو 10 اوورز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہوا ہے. اگر 10 اوورز یعنی 90 اوورز مکمل ہو جاتے تو
شاید اتنا سکور ہوتا. بالکل ہو، تو یہاں پہ آپ کو سامعین یہ بھی بتائیں کہ 81.3 اوور کا کھیل ہو سکا. موسم جو اس وقت وہاں پہ خراب روشنی کی وجہ سے کھیل کو ختم کرنا پڑا آج کے دن کو. میں آپ کو بتا رہا تھا ٹیم کے حوالے سے، آسٹریلین ٹیم کے حوالے سے ڈیوڈ وارنر ہیں، بینکرافٹ ہیں، عثمان خواجہ ہیں، کپتان سٹیو سمتھ تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ بیٹسمین ہیں، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہینڈسکامب ہیں، بالنگ بھی کرتے ہیں، بیٹنگ بھی کرتے ہیں، اور اچھی کارکردگی ان کی جانب سے بھی دیکھنے میں نظر آئے گی، امید یہی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مارچ ٹیم کا حصہ ہے، ٹیمپین ٹیم کا حصہ ہے، میچل سٹارک ہیں، کمنس ہیں، ہیزل وڈ ہیں اور لیون ٹیم کا حصہ ہیں. تو ایز اے ہول اسکواڈ کی اگر بات کی جائے تو بڑا بیلنس اسکواڈ ہے اور بہت تگڑا اسکواڈ اپنا میدان میں اتارا ہے آسٹریلین.
جس طرح وارنر ٹیم کا حصہ ہیں، کافی وہ ایکسپیرینس بلے باز ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بینکرافٹ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں، عثمان خواجہ جو کہ ون ڈاؤن کے پوزیشن پر وہ ہمیشہ بیٹنگ کے لیے وہ آتے ہیں، تو کافی وہ بھی تجربہ رکھتے ہیں، اور پھر سمتھ جو کہ ٹیم کے کپتان ہیں، تو سمتھ اور وارنر یہ دو وہ بلے باز ہیں جو کہ آسٹریلیا کے لیے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بالنگ کی بات کی جائے تو ہاسلی وڈ ہیں، کامنز ہیں، سٹاک ہیں جو کہ کافی ایکسپیرینس بالرز ہیں، لائن ٹیم کا حصہ ہیں، تو کافی بیلنس ٹیم ہے.
بالکل
بیلنس سائڈ ہے،
بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بیلنس سائڈ ہے. اور دیکھیں کل کے دن کے بعد کچھ صورتحال واضح ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت دنیا کرکٹ کے شائقین کی نظریں اس وقت ایشیز کے اوپر جمی ہیں، اور بہت انٹرسٹنگ ایونٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک میتھیکل تاریخ ہے، تو اس کے ساتھ جذبات بھی جڑے ہوتے ہیں بلا شبہ. جس طرح پاک انڈیا میچ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اس طرح ایشیز کو بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، تو ہم نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے. پوری دنیا میں شائقین کرکٹ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. بڑھیں گے بلاد آخر اگلی خبر کی جانب، اور غفار میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ فارورڈ کی گئی ہے کہ बाकायदा तौर पे लॉज बनाए जाएं करप्शन जो खेलों में करप्शन के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ऐसा कानून मुतारिफ कराया जाए कि जो खेलों में करप्शन के खिलाफ हो और खिलाड़ियों को इस तरह की का फिक्सिंग की और स्पॉट फिक्सिंग की का जो मामला है उनसे रोके। एपीपी से बात कर रहे थे पीसीबी के ऑफिशियल, उन्होंने इस हवाले से बात भी की, उन्होंने बताया कि हम यही चाह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कवानीन वजा हो जाए। तो एक अच्छी कोशिश है। अभी जिस तरह बड़ा अच्छा टैलेंट पाकिस्तान खो देता है, मैं बार बार मेरे जेहन में मोहम्मद आसिफ का नाम आ जाता है, सलमान भट्ट का नाम आ जाता है जब इस तरह की बात होती है। लास्ट अगर आप बात करें तो शर्जील खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तगड़ा बैट्समैन हो चुका था, टेक्निक बेहतर कर चुका था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो टीम का हिस्सा नहीं है इस तरह की एक्टिविटीज की वजह से। तो जब सख्त कानून इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मुतारिफ हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी टीम को ही फायदा होगा।
शाहजेब, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि फेडरेशन के जो अहदेदार होते हैं
बिल्कुल
उन्हें भी इस कानून से गुजारना चाहिए, क्योंकि अक्सर फेडरेशन को काफी बड़े फंड्स मिलते हैं लेकिन वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते इस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहिए होता है उनको। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दीगर अहदेदार हैं, जो कि हमेशा वो भी करोड़ों में रुपए खर्च करते हैं, अरबों में खर्च करते हैं, तो ये एक जबरदस्त कावच है और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को बिल्कुल इसी तरह कवानीन बनाने चाहिए, तो इससे पाकिस्तान में जो खेलों की बेहतरी है वो यकीनन मुमकिन की जा सकती है। जिस तरीके से हमेशा ये गिला शिकवा सामने आता है कि फलाने फेडरेशन को इतना फंड्स जारी किया गया था लेकिन उस तरीके से फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। और हालिया अगर देखा जाए तो हॉकी फेडरेशन पर भी इस किस्म के कुछ इल्जामात लगे थे, तो इससे काफी फायदा होगा।
बिल्कुल जी, इस तरह के कानून से अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी जब आपके पास क्वालिटी बैट्समैन होंगे और ये खतरात नहीं होंगे कि वो किसी भी गैर इखलाकी एक्टिविटी में मुलविस हो सकते हैं। सामिन बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब, बात करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट शायकीन के लिए, खास तौर पर जो पाकिस्तान में पीएसएल के शायकीन है उनके लिए थोड़ी सी मायूसकुन खबर है, कराची वालों के लिए भी, कि कराची में पीएसएल का फाइनल का रंग जो है फीका रहने का खदशा है। इस वक्त चेयरमैन पीसीबी ने इस बात का इजहार किया है कि बेशतर गैर मुल्की क्रिकेटर की जानिब से क्लीयरेंस नहीं मिल रही है कराची के हवाले से, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी मायूसकुन बात है। अभी तक तो खैर अल्लाह करे कि इन फ्यूचर हालात इस तरह बने या सिक्योरिटी टीम्स की क्लीयरेंसिस की वजह से खिलाड़ी आने पर आमादा हो जाए। अबूधाबी और दुबई के मैचेस तय होने पर शेड्यूल का ऐलान चंद रोज में बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। डिटेल्स इस बारे में यही आई है कि नजीम सेठी ने कहा है कि पीएसएल 3 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी लाहौर आने पर तो रजामंद हैं और दो तरह की हम फहरिस्तें तैयार करें जिसमें से एक ऐसे खिलाड़ी शामिल है जो कराची और लाहौर दोनों में खेलने को तैयार हैं, जबकि दूसरी जानब की अगर बात की जाए तो लाहौर आने पर आमादा प्लेयर्स के नाम जो हैं वो भी शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि कराची के लिए बहुत कम क्लियरेंस मिली है, इस बात पर मैं कब छुपाना नहीं चाहूंगा, ये बात गुजशत साल भी यही मामला था और फर्क यह है कि इस वक्त फ्रेंचाइज भी कोई तैयार नहीं थी, अब उन्होंने हामी भर ली है अगर कोई कराची में नहीं खेलता तो दूसरे आ जाएंगे। तो ये
जहां तक कराची में कम खिलाड़ियों के हवाले से बात का ताल्लुक है तो जहां तक मैं समझता हूं ओपन लिस्ट को अगर रखा जाए और फिर जो कि हमेशा कराची और लाहौर रीजन्स का एक झगड़ा होता है कि कराची वालों को वो सहूलियात और वो हक नहीं दिया जाता जो लाहौर वालों को दिया जा रहा है, तो यहां पर थोड़ा बहुत शक भी किया जा सकता है। सिटी साहब से मैं इतफाक नहीं करूंगा क्योंकि सिटी साहब का मेरे ख्याल में कल एक स्टेटमेंट था और वो काफी मुतमईन दिखाई दे रहे थे लेकिन आज कुछ वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मुआवजा, जिस तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं, डॉलर्स दिए जा रहे हैं क्रिकेटर्स को, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी खिलाड़ी इस वक्त तैयार नहीं है कराची में खेलने के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी प्रेशर डालना चाहिए कि अगर आपको हम
मैं यहां पे थोड़ा सा इख्तलाफ आपसे करूंगा इस बात के हवाले से कि खिलाड़ी तैयारी, क्योंकि नजम सेठी साहब की खिदमात जो हैं उनको हमें सराहना चाहिए। आपकी टीम जो इस वक्त जिस बेहतर पोजीशन पे उनमें चेयरमैन पीसीबी का बहुत ज्यादा किरदार है और उनकी कोशिशों पे हम शक नहीं कर सकते
जी बिल्कुल
हैं।
और जिस तरह कामयाबी से पीएसएल का उन्होंने लेकिन लाहौर वाले
जहां तक कि लाहौर और कराची की बात है तो उसमें बिल्कुल हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये समझते हैं कि हर जगह मैचेस होने चाहिए, हम तो ये भी कहते हैं रावलपिंडी में मैचेस होने चाहिए, लाहौर में भी होने चाहिए, कराची में भी होने चाहिए, और इस हवाले से बात होती नजर आई भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो सिंध के हैं, तो इस हवाले से वहां पे भी बात जारी है, और बल्कि सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके साथ भी ये बात हुई और डिफरेंट
कराची स्टेडियम का बाकायदा वो उस पर
बिल्कुल उस बारे में कुछ खतीर रकम भी जारी की गई है। और देखें अगर कोई इस तरह की बात होती तो कराची का नाम अनाउंस ही ना किया जाता। और जहां तक खिलाड़ियों की बात है और पैसों की बात है तो उसकी लास्ट अगर आप टाइम की एग्जाम्पल ले लें तो केविन पीटरसन एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत खिलाड़ी ऐसे थे जो मैचेस देख चुके थे लाहौर में होते हुए और उनको अंदाजा भी था कि लाहौर में काफी काबिल इत्मीनान सूरत हाल है, मगर वो फिर भी नहीं आए थे क्योंकि बाज दफा इन मामलों में खिलाड़ी
ऐसे जो आने के लिए बेचैन है और वो सिर्फ मौका
बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर बाज दफा इस तरह होता है कि खिलाड़ी सिर्फ खुद फैसला नहीं कर पा रहा होता, उनकी फैमिली उनको बैक नहीं कर रही होती, ये भी मसाइल होते हैं क्योंकि श्रीलंका का वाला वाकया कतई तौर पर छोटा वाकया नहीं था और उसने बड़ा डैमेज किया है। मगर नजम शेरी साहब चेयरमैन और खास तौर पर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को जिन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, और पाक अफवाज के को हम किस तरह भूल सकते हैं, और गुज़िश्ता रोज भी जितनी बड़ी शहादत हुई है मेजर इसहाक शहीद की, उन्होंने वतन अजीज में हालात को पुरअमन करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है और कौम उनको हमेशा याद रखेगी। पाक अफवाज की खिदमात हैं, हुकूमत की खिदमात हैं, और आज ये सूरत हाल के लाहौर में मैचेस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कराची में भी हूं और इंशाल्लाह हुलजीज हम होते हैं देखेंगे, और जिस तरह लाहौर की सूरत हाल से गैर मुल्की खिलाड़ी मुतमिन नजर आते हैं इंशाल्लाह कराची से भी होंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह सिटी साहब काफी वो मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में अब मैचेस का इनेकाद किया जा सके, और इस तरह पाकिस्तान आर्मी ने भी ये ख्वाहिश की है कि पाकिस्तान में जो जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर मैचेस का इनेकाद किया जा सके और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देख सकेंगे।
बिल्कुल, यहां पे नजम सेठी का जिक्र आपने किया तो मैं चाहूंगा कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के बारे में एक और भी उनका बयान सामने आया कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज के हवाले से जनवरी में आईसीसी तनाजा कमेटी में केस हम दायर करने जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर नजम सेठी ने कहा कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज के मामले पर अराकीन को एतमाद में लिया है, जनवरी के पहले हफ्ते में आईसीसी की तनाजात कमेटी के सामने हम बाकायदा तौर पर केस दायर कर देंगे। आईसीसी ने तरमीम कर दी है कि अब तनाजात कमेटी के बाद किसी दूसरे फोरम में नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी टूर्नामेंट में पाक भारत मैच होगा तो भारत को खेलना होगा, ना खेलने पर पाकिस्तान को पॉइंट्स मिलेंगे, ज्यादा बेहतर ये होगा कि भारत क्रिकेट सीरीज हो, बीसीसीआई हुकूमत से इजाजत मांग रहा है।
जी बिल्कुल, और इस पर कल भी हमने बड़ी डिटेल से बात की थी शाजेब, और यकीनन केस करना चाहिए, जिस तरीके से मुआहदे होते हैं और अब भारत हमेशा पासदारी नहीं करता तो होना चाहिए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यहां पे मैं चाहूंगा कि आखिर में जाते जाते प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म होना चाहता है कि मोहम्मद आमिर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं कि 2019 तक इंशाल्लाह अपनी कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर बहाल कर लूंगा और 2019 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करूंगा, और वो काफी इस हवाले से कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। सामीन आपके साथ खेलों के हवाले से खबरें शेयर थी, हमारी कोशिश होती है कि इस मुख्तसर से टाइम में आपके साथ ज्यादा से ज्यादा खबरें शेयर कर सकें और आपको आगाह कर सकें खेलों की खबरों के हवाले से। वक्त चूंकि खत्म होना चाहता है, आपको बताता चलूं कि हमें तकनीकी मामलत हासिल रही मोहम्मद अवैस मेराज की, प्रोग्राम इंचार्ज से इमरान लतीफ, कोऑर्डिनेटर थे अरशद असगर और निगरानी आला थे जावेद खान जदून, मुझे शाहजेब धरेजा और मेरे साथी मेजबान अब्दुल गफार खान को इस दुआ के साथ दीजिए इजाजत कि जहां रहें खुश रहें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।